ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धश्रज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यामनोभिस्सं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च अतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हर रविवार की तरह आज की इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसे आप सब परिचित हैं कि कुछ ही दिनों में एक विशेष उत्सव का आगमन हो रहा है। मनुष्य को कहा जाता है उत्सव प्रेमी प्राणी। हम भी एक प्राणी हैं। उस जू में जो प्राणी होते हैं उतने नहीं, बल्कि हम भी एक प्राणी है, लेकिन हम कैसे हैं? उत्सव से प्रेम करते हैं। हमारे जीवन में से यदि उत्सव निकाले जाए, फेस्टिवल्स को हटाया जाए, तो निरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरस। तो वास्तव में देखा जाए, हम सब अपने दैनंदिन जीवन में एक रस की अनुभूति करना चाहते हैं, रस को ढूंढते हैं। कोई व्यक्ति जॉब करता है तो उसमें उसको एक रस है, क्योंकि महीने के आखिरी में सैलरी मिलती है। घर आता है तो पत्नी के चेहरे में मुस्कान देखना चाहता है, वो देखकर उसको एक विशेष प्रकार का रस मिलता है। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता है। तो कई प्रकार से आप अपने नियमित जीवन में रस को ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो कुछ, जैसे दिल्ली में चांदनी चौक खारी बावली जाओगे तो वहां कई लालाज बैठे रहते हैं अपने दुकानों में, तो पूरे दिखाई भी ना दे फिर भी जो काउंटर है उसमें बैठे रहेंगे, क्योंकि उन्होंने वहां बैठकर जो पैसे का आदान प्रदान है उसको देखने का भी एक विशेष रस उनको अनुभव होता है। तो लेकिन देखा जाए कि हम सब पूरा प्रयास करते हैं अपने जीवन में, कई बार सोचते हैं अरे सिटी लाइफ में कोई रस ही नहीं है, कहते ना कुछ रस ही नहीं रहा आजकल जीवन में। थोड़ा सा टूरिंग के लिए जाते हैं, शिमला जाएंगे, ऊटी जाएंगे, मनाली जाएंगे, विदेश जाएंगे, हाँ तो वहां जाकर या सिटी में रहने वाला जो व्यक्ति है वो थोड़ा गांव के वातावरण उसको अच्छा लगता है। नदियां हैं, झरने हैं, पंछियों की चहचहाट है और सुंदर हवा है, फ्रेश एयर है, तो उसमें एक विशेष आनंद और एक रस विशेष मिलता है। लेकिन ज्यादा दिन वहां नहीं रह पाता, फिर भी सोचता नहीं यार कब मैं फरीदाबाद चला जाऊं फिर ना? तो इस प्रकार से देखा जाए हम सारे जीव अपने जीवन में रस को ढूंढते हैं। तो लेकिन वास्तव में रस के भंडार कौन है? कौन है? कृष्ण है। इसलिए वैदिक शास्त्र कृष्ण को कहते हैं रस वैसा। कृष्ण तो रस से पूर्ण है, परिपूर्ण है, इसलिए भगवान को कहा जाता है रसिक शेखर। कृष्ण के कई नाम है, उसमें से कृष्ण को कहा जाता है कि रसिक शेखर।
सारे रसों के आस्वादन करने में जो पटु हैं, एक्सपर्ट हैं, और भगवान कृष्ण को इसलिए कहते हैं रसराज श्री कृष्ण। एक बुक भी है प्रभुपाद की छोटी सी, रसराज श्री कृष्ण। तो हम अपने जीवन में सब प्रकार के रस ढूंढ 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 के थक जाते हैं। अभी मनुष्य जीवन में हम रस की अनुभूति करते किससे करते हैं? पहले तो जीवा से, हाँ, टेस्ट, फ्लेवर। ये रस क्या है? फ्लेवर्स है। या तो हम डिफरेंट जो आइसक्रीम के फ्लेवर्स, उससे मन नहीं भरता तो कुछ और खाते रहते हैं, कुछ और चखना शुरू करते हैं। तो अल्टीमेटली हम अलग अलग शरीरों को धारण करते हैं। वो धारण करने के पीछे एक ही चीज है जो हमें भगाती है, नाना योनि सदा फिरे करदय भक्षण करे, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। अलग अलग बॉडीज में क्यों जाते हैं हम? रस ढूंढ रहे हैं, फ्लेवर। मनुष्य जीवन में जो फ्लेवर चख सकते हैं वो सुअर के जीवन में नहीं है। तो मनुष्य देह होने के बाद भी सुअर जैसा रस आस्वादन करना चाहता है तो फिर भगवान सुअर का शरीर देते हैं। मांस आदि खाना चाहता है तो वो भी एक विशेष प्रकार का रस है, तो उसके लिए अलग अलग शरीर हमें मिलते हैं। तो इसलिए हम वास्तव में हम सब चीजों को ढूंढ रहे हैं, रस को ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए मनुष्य का प्राणी ये उत्सव प्रिय है। उसके जीवन से फेस्टिवल्स को हटाओ, उसमें एक रस है, आनंद है, तो वो नीरस हो जाएगा उसका लाइफ। इसलिए मनुष्य को कहते हैं उत्सव प्रिय प्राणी। और अभी नजदीक ही गौर पूर्णिमा का उत्सव आने वाला है। कौन सा पूर्णिमा? गौर पूर्णिमा। कई प्रकार की पूर्णिमाएं हैं। तो गौर, ये नाम किसने सुना है पहले? गौर सरनेम होते हैं। हमारे एक प्रभु है डॉक्टर, उनका सरनेम क्या है? डॉक्टर गौर। हम दिल्ली में रहते थे तो वहां भी एक डॉक्टर थे, सारे हम डिवोटीज उनके पास जाते थे वो गड़ी में, तो उनका भी नाम गौर था, गौर क्लिनिक। तो हम भक्तों को ऐसे अच्छा लगता है भगवान से संबंधित नाम पढ़ते हैं। तो ये जो गौर है या गौरांग, गौरांग महाप्रभु, हाँ, जो चैतन्य महाप्रभु है, हाँ, उनको क्या कहा जाता है? कई सारे नाम है, तो उनका एक नाम है गौर, एक नाम है गौरांग। तो गौरांग, हाँ, बल्कि जनरली चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो सारा विश्व है वो जानता नहीं है। इवन हमने भी पहले कभी इस्कॉन में आने से पहले चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना भी नहीं था। आने के बाद पता चला कि कोई पर्सनालिटी है, परम भगवान है चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे गौरांग महाप्रभु भक्तिविनोद ठाकुर पूछते कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गौरांग 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 भगवान गौरांग का नाम उच्चारण करता है तो ये जो कृष्ण प्रेम है वो उस व्यक्ति को ढूंढते हुए जाता है। कौन नाम ले रहा है? कृष्ण भक्ति उसके पीछे भागने लगती है, कृष्ण प्रेम उस व्यक्ति को सर्च करता है, ढूंढता है। हाँ, ऐसे हुआ। लास्ट ईयर हम मायापुर में थे तो वहां एक ब्रह्मचारी थे, तो वो न्यूजीलैंड से थे, तो बता रहे थे कि मैं कैसे ब्रह्मचारी बना, हमने कहा बताओ। तो उसने कहा कि मुझे जो वीडियो गेम्स है वो खेलने का नशा था, वीडियो गेम्स दिन रात लगा रहता था उसमें। लेकिन एक ऐसी गेम थी जिसमें जीत जाता था व्यक्ति, गेम के जो फाइनल एंडिंग है, तो उसके बाद एक साउंड आता था। वो कैसे और क्या साउंड था? गौरांग का साउंड था। क्या था? गौरांग। क्या था नाम बोलिए? तो उस वो तो कोई भक्त नहीं था, लेकिन वो गेम में उसको गेम के एंड में ये नाम, ये जो साउंड अच्छा लगता था उसको, पता नहीं है क्या साउंड है, गौरांग गौरांग, विजयी हो जाता था, जीत जाता था गेम। तो फिर एक दिन वो घूमने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ गए, तो इस्कॉन टेम्पल गए, तो वहां गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल हो रहा था और वहां जितने भी भक्त हैं जोर जोर से हाथ ऊंचे कर करके कूद रहे थे, नाच रहे थे और गौरांग 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 बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? गौरांग गौरांग गौरांग। अभी इसने सोचा ये भी सोचने लगे यहाँ के सारे लोग गेम ही खेलते हैं शायद वीडियो गेम ये लोग भी खेलते हैं, क्योंकि ये जो नाम ये जो गौरांग है ये तो मैं अपने वीडियो गेम के एंड में सुनता हूँ। और फिर वो देखा सब लुनाशे गौरांग गौरांग कहते, ये भी अपने मित्रों के साथ गया था, युवक ही था, ये भी नाचने लगा गौरांग गौरांग। उसको लगा कि कुछ तो सिमिलैरिटी है, किसी प्लेटफॉर्म में हम आपस में मिल सकते हैं, फ्रेंडशिप बना सकते हैं। तो फिर उसने एक भक्त को पूछा कि आप लोग की गेम खेलते हो क्या, ये गौरांग का नाम बोलते रहते हो? कहते कि हाँ, वो डिवोटी भी ऐसे था, उसने कहा आप भी गेम खेलते गौरांग का ये जो गेम है। वैसे हम मायापुर में हमारे एक महाराज है जयपता का महाराज, वो सारे भक्तों के साथ जब गंगा में स्नान करते हैं तो इतना बड़ा क्या फुटबॉल उसको लेते हैं, और पानी के अंदर आपको तैरना है और बॉल आपके ऊपर फेंका जाएगा और आपको पकड़ना है और क्या बोलना है गौरांग, और नहीं बोलेंगे तब आउट। तो वो जो न्यूजीलैंड का वो जो युवक था उसको फिर अच्छा लगने लगा और वो ब्रह्मचारी बना। और भक्तों ने फिर सर्च किया कि गेम किसने डिजाइन किया है, पूरा जड़ में चले गए। भक्तों की आदत है कोई विषय मिले तो कहते ना खाल निकालना किसी चीज की, पूरा डिप में जाएंगे। तो वैसे ही वो जो डिवोटी सिंपल के उन्होंने सर्च करना शुरू किया तो पता चला एक ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति था जिसने ये जो गेम है वो डिजाइन की थी, बनाई थी। और उसको जब मिले उससे पूछा कि क्या क्यों ये नाम डाला है तुमने, तो उसने कहा कि मैं जब जा रहा था तो एक बिलबोर्ड मुझे नजर आया। अभी इस्कॉन के भक्तों ने बिलबोर्ड लगाया होगा गौर पूर्णिमा का, तो उस बिलबोर्ड में गौरांग लिखा हुआ था बड़े अक्षरों में। तो ये व्यक्ति जो भी डिजाइनर होगा, गेम डिजाइन की थी इसने, तो ये जब जा रहा था अपनी कार से तो वो बिलबोर्ड में उसने पढ़ा गौरांग, उसको बड़ा अच्छा लगा ये नाम। तो उसने अपनी जो भी गेम्स थी उसके एंड में जब जीत जाएगा तो उसने ये डाल दिया था ये जो नाम है। जिस प्रकार से देखा जाए भक्तिन और ठाकुर कहते हैं ये जो गौरांग नाम है ये वास्तव में कोई व्यक्ति उच्चारण करता है तो कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति उसको ढूंढते हुए आती है उसके पास। इसलिए इस जो सॉन्ग हमने गाया उसमें भी कहते हैं कि बोलो गौरा हरि, क्या बोलो हमारे किनिया लोहो बोलो गौरा हरि। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि आप यदि मुझे खरीदना चाहते हो, मुझे परचेस करना चाहते हो तो एक ही चीज है और वो क्या है गौरांग महाप्रभु के नामों का उच्चारण करना। तो इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र से पूर्व एक महामंत्र बोलते हैं, पंचतत्व मंत्र, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी गौर भक्त वृंद। तो इस प्रकार से हम गौरांग, तो गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे नाम है। गौरांग पहले उनका बचपन का नाम क्या था, निमाई, नीम वृक्ष के नीचे जन्म लिया, सीता ठाकुरानी ने उनको नाम दिया निमाई। तो फिर बाद में उसी समय उनके जो पिता थे जगन्नाथ मिश्र, उन्होंने जब बालक का मुख देखा इतना सुवर्ण वर्ण का है तो उन्होंने कहा गौरांग। और फिर वही उनके जो संन्यास गुरु हैं उन्होंने उनको नाम प्रदान किया था श्री कृष्ण चैतन्य, क्योंकि ये ऐसी पर्सनालिटी है कि हर जीव की जो कृष्ण चेतना है वो जागृत करने में सक्षम है, या फिर हर व्यक्ति के मुख में कृष्ण नाम प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं या उच्चारित करवाने का सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए वो श्री कृष्ण चैतन्य है। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहे तो उनको ये टाइटल डिवोटीज ने प्रदान किया महाप्रभु। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का ये जो आविर्भाव है अपीयरेंस डे है वो बहुत नजदीक है। जिस प्रकार से हमें जन्माष्टमी महत्वपूर्ण है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण जो भी गौड़िया संप्रदाय के भक्तगण हैं उनके लिए ये गौर पूर्णिमा उत्सव है। होली में तो लोग क्या करते हैं, अंधे हो जाते हैं, कलर्स भौतिक कलर्स में मग्न रहते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन आध्यात्मिक रंगों से भरा होना चाहिए। नहीं, उसके ऊपर एक अलग से डिस्कशन हो सकता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का ये जो प्राकट्य है 16 मार्च को आने वाला है, तो हम आज चर्चा करेंगे कि क्यों भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। तो आपको बड़े गंभीरता से श्रवण करना है। आपके पास मोबाइल है तो कंपनी ने फैसिलिटी प्रोवाइड की है। क्या फैसिलिटी है? साइलेंट मोड में भी आप उसको रख सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी कथा में बैकग्राउंड म्यूजिक की आवश्यकता नहीं है। तो हाँ, जैसे अलग अलग कथाएं हम बचपन से सुनते हैं, कृष्ण कथा, भागवत कथा हो रही है, नहीं ना, भागवत कथा हो रही है, ये कथा हो रही है, वो कथा, लेकिन जब ये बात आती है कि अरे गौर कथा होने वाली है, कौन सी कथा? गौर कथा। ये तो पहली बार सुनते हैं हम। ये गौर कथा क्या होती है? बचपन से तो सुना है कृष्ण कथा है, गीता की कथा या भागवत कथा है, तो लेकिन ये गौर कथा क्या है? गौर कथा का मतलब ये है श्री चैतन्य महाप्रभु या गौरांग, गौर अंग, जिनका अंग कैसा है, गौर वर्ण का है, उनको गौरांग कहते हैं। तो ऐसे गौरांग महाप्रभु की जो गौर कथा है उनके बारे में जो श्रवण है, ऐसे नहीं कि ये अभी इस्कॉन आंदोलन शुरू हुआ तब से चैतन्य महाप्रभु को लोग जानते हैं या उनके बारे में सुनते हैं, नहीं। भागवतम से पूर्व भी जब कलियुगा के शुरुआत में नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे थे और सूत गोस्वामी प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आज आप सबको गौर कथा सुनाऊंगा। जैसे ही अनाउंसमेंट हो गई पूरे त्रिभुवन में 14 जो प्लैनेट्स हैं, तो अलग अलग देवतागण भी आने लगे उस कथा, उस लेक्चर को अटेंड करने के लिए। तो जब शिवजी को पता चला, क्योंकि शिवजी और पार्वती ऐसे पति पत्नी हैं कि कृष्ण कथा के बिना वो एक क्षण नहीं रह सकते, वो सदैव निमग्न रहते हैं। शिवजी और पार्वती कृष्ण के बारे में सुनेंगे या बोलेंगे, बस और कुछ नहीं, बिजनेस करते हो। तो ऐसे शिवजी को जब पता चला कि कृष्ण गौर कथा हो रही है, कहा नवद्वीप मायापुर में, कहा हो रही है, हाँ, जैसे कृष्ण वृंदावन में निवास करते हैं, तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु का जो धाम है वो नवद्वीप मायापुर है। तो ऐसे भगवान की ये जो कथा होने वाली थी 88,000 ऋषि मुनियों के द्वारा नैमिषारण्य में, तो उस समय शिवजी को पता चला कि मैं लेट हो रहा हूं, कैसे जाऊं? तो उन्होंने अपना देखा कि मेरे पास तो गाड़ी कौन सा है उनका, नंदी बैल है, अभी बैल पे बैठेंगे और कई किलोमीटर की जर्नी है, कैसे पहुंच पाएंगे? तो उनको ध्यान आया कि सामने वाले के घर में तो अच्छा कार है, सामने किसका घर है, ब्रह्मा का, ब्रह्मा के पास अच्छा व्हीकल है, गाड़ी है, कौन सा है, हंस है, हंस वाहन, हंस तो उड़ते हुए उसी क्षण में पहुंच सकता है। तब तो शिवजी ने कहा अरे नंदीबैल पहुंचेगा नहीं, उनका गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ा है, जाता हो सीधा। शिवजी बैठ गए हंस के ऊपर और बैठकर सीधा चले गए, सीधा क्लास के बाहर पीछे पार किया और दौड़ते हुए आगे जाके बैठे। तो इस प्रकार से वर्णन आता है शास्त्रों में कि चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु के बारे में सुनने के लिए भी शिवजी जैसे बड़े बड़े देवी देवता गण बाकी सारी एंगेजमेंट्स को दूर करके प्रयास करते कि कैसे मैं जल्दी पहुंचू, हम प्रयास करते कि कैसे ऑन टाइम पहुंचू। ऑन टाइम क्या है? प्रसादम टाइम है कि नहीं? ऑन टाइम मीन्स क्लास शुरू होने का टाइम नहीं, हाँ, तो ऑफ टाइम है वो। तो ऐसे शिवजी पहुंचे और उन्होंने श्रवण करना शुरू किया, हाँ, तो ब्रह्मा आदि भी आ गए। तो इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु के बारे में श्रवण करना शास्त्रों में बहुत उचित कहा गया है। इसलिए कहते हैं चैतन्य चरित्र जयी अमृतेर सिंधु कर्ण मन तृप्त करे जार एक बिंदु, कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रवण करना ये अमृत को पीने के समान है। कृष्ण कथा या भगवत कथा भगवान के बारे में सुनना ये अमृत से भी अधिक स्वीट है, मधुर है, क्योंकि इनको श्रवण करने मात्र से कर्ण मन तृप्त जारे एक बिंदु। अभी हम अपने जीवन में कितने प्रयास करते हैं अपने मन को तृप्त करने के लिए, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, तृप्ति है नहीं, है ना। किसी का नाम तृप्ति होगा तो वह तृप्त नहीं हो सकती, है भौतिक जगत में जो नाम है वैसे गुण है नहीं। किसी का अमर है तो अमर नहीं होगा। तो इसी प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि यदि चैतन्य महाप्रभु के बारे में कोई सुनता है, इतना पावरफुल है उनका जो चरित्र है, उनके जो कार्यकलाप है, कि उसका श्रवण करने मात्र से, थोड़ा भी श्रवण करते हैं तो हमारा कान मन हृदय आदि तृप्त होने लगता है। तो इस प्रकार से शास्त्र इसकी व्याख्या करते हैं। तो कौन है चैतन्य महाप्रभु? जो भगवान कृष्ण द्वापर युग के अंत में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर भगवद गीता का उपदेश देते हैं 45 मिनट तक गीता का, अर्जुन सुनते रहते हैं। तो इसलिए इस बार में प्रभुपाद भी कितने मिनट का प्रवचन देते थे? 45 मिनट, 45 मिनट। क्योंकि कलयुग के जीव ज्यादा सुन नहीं सकते। अब देखो कौन किसकी सुनना चाहता है, चाहे ऑफिस हो या घर हो, हम सब क्या करना चाहते हैं? सुनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से वो अर्जुन बहुत धैर्यशाली थे, युद्ध स्थल के भूमि में ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। हम यदि ऑफिस में निकल रहे और बस तो कहा जो कोई आ जाए, प्रभु जी रुको मैं आपको ना थोड़ा सा कृष्ण कथा सुना के भेजता आगे 10 मिनट, वो भाग जाएगा। तो वैसे ही जब भगवान ने उपदेश दिया और उस उपदेश का जो सार है, भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। और फिर अंत में कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, कि सारे धर्मों का त्याग करो और केवल एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। अर्जुन डरो मत, मा शुच मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा सारे पापों से। तो इतना बड़ा प्रवचन दिया और मतलब उसमें तो ऐसे कि भगवान हथौड़े मार रहे हैं। गीता में क्या है, हैमरिंग किया जा रहा है, ये करो वो करो, पूजा करो, नमस्कार करो, मेरे शरण ग्रहण करो, किसी और के शरण ग्रहण मत करो। मतलब वहां तो हथौड़े मार मार के हमें भगवान बोल रहे हैं। अभी कोई व्यक्ति ऐसा बोलता जाए किसी को अच्छा लगेगा? कैसे बोलना चाहिए? मधुरता से बोलना चाहिए। नहीं, जब कोई वाणी बहुत महत्वपूर्ण है, हिटलर ने इतने लोगों को अपना प्राण निछावर करने के लिए कैसे प्रेरित किया था, रोज रेडियो में टॉक देता था और उसको श्रवण करके जो जर्मन लोग हैं, सैनिक जो भी नागरिक है सिटीजन, वो अपना जीवन हिटलर के लिए अर्पित करने के लिए तैयार थे। तो जब कोई गड्ढा आता था, हिटलर को क्रॉस करना होता था, तो हजारों लोग उस गड्ढे में गिर जाते थे। ऊपर से जो क्या है मशीनरीज निकल जाती थी युद्ध की, उनके नीचे लोग मर जाते थे, इतने तत्पर थे। सोचो क्या इंस्पिरेशन है, केवल कैसे हिटलर का जो टॉक है। अभी भगवद गीता में भी भगवान ने बोला, बहुत हेवीली बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन फिर भगवद गीता का उपदेश देने के बाद भगवान तो अपने धाम में चले गए। स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, भगवान अपने धाम में चले गए इस जगत को छोड़कर, धर्म ज्ञान आदि सबको लेकर। तो उन्होंने भागवतम प्रदान किया। फिर जाने के बाद जब कलयुग शुरू हुआ तो भगवान थोड़ा सोचने लगे कि मैं क्या करके आया हूं। भगवान वेट कर रहे थे, अरे मैंने इतना अच्छा प्रवचन दिया, कोई अभी तक शरण नहीं ग्रहण कर रहा है, मेरी पूजा करने के अलावा सारे जगत की पूजा कर रहा है, मुझे प्रणाम करने के अलावा सारी दुनिया को प्रणाम कर रहा है, सबको नमस्कार कर रहा है। तो भगवान ने सोचा कुछ तो उचित नहीं। फिर भगवान को याद आया, क्या क्या याद आया कृष्ण को? भगवान सोचने लगे आपने ना कैला धर्म शिखान ना जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवते गाय। भगवान ने सोचा कि आपने ना कैला, मतलब मैं यदि अपने जीवन में आचरण नहीं करूंगा तो मेरे पास अधिकार नहीं है कि मैं दूसरों को शिक्षा प्रदान करूं। ये बात किसने सोची? कृष्ण ने। आपने ना कहला धर्म शिखान ना जाए, यदि आप नहीं आचरण करते तो आपको यह अधिकार नहीं बनता कि आप दूसरों को शिक्षा दो। यही तो सिद्धांत, यही तो सिद्धांत गीता भागवते गाय, गाय मतलब वर्णित कर रही है गीता और श्रीमद् भागवतम। इस प्रकार से भगवान जब सोचने लगे, जैसे महात्मा गांधी के बारे में हम सुनते हैं, एक माता जी का बेटा था, बहुत क्या खाता था, स्वीट खाता था या गुड़ खाता था। किसी ने कहा भाई डॉक्टर को ऐसी मेडिसिन तो है नहीं कि स्वीट खाना बंद हो जाए। किसी ने कहा महात्मा गांधी, वो जो बोलेंगे ना बच्चा तुरंत फॉलो करेगा। गई है लेडी बच्चे का कान पकड़ के, महात्मा जी उन्होंने कहा बताइए बेटा ना बहुत तो खाता है स्वीट खाता है और अब पता है दांत खराब हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। महात्मा गांधी ने कहा अगले हफ्ते लेके आइए। फिर महात्मा गांधी अपना रूम चेक करने लगे कि अरे मेरे रूम में तो शुगर का डब्बा भरा पड़ा है, गुड़ का डब्बा भरा पड़ा है। तो फिर जब वो आए नेक्स्ट वीक तो उन्होंने कहा बेटा एक गुड़ खाना छोड़ दो, हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है स्वीट खाना। तो बच्चों ने कहा ठीक है, बंद हो गया। तो माता जी ने पूछा उस लेडी ने कि आप इतना एक वाक्य बोलना था तो वो पिछले हफ्ते तो बोल देते, क्यों मुझे दोबारा आना पड़ा। उन्होंने कहा उस समय में क्या करता था, खुद भी उसका सेवन करता था या खा रहा था। तो भगवान ने सोचा मैं तो सबको कह रहा हूं मेरी शरण रन करो, मेरी भजन मेरा भजन करो, मेरी सेवा करो, लेकिन मैंने आचरण करके सिखाया नहीं है। हाँ तो कैसे, इनके लिए मैंने एक उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है। तो फिर भगवान सोचते हैं कि मैं जाऊंगा और क्या करूंगा, अपने आचरित प्रभु सिखाए सवारे, अपने आचरण से भगवान सारे विश्व को शिक्षा प्रदान करना चाह रहे थे। तो इस प्रकार से कलयुग की शुरुआत में भगवान अवतरित होते हैं। युग धर्म प्रवर्तन हय अंश है ते आमाविना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। तो भगवान सोचने लगे कि एक तो चीज है कि अभी युग धर्म प्रवर्तन का समय हो गया है, मतलब हर युग में हर एक अवतार आता है, वो अवतार आकर उस युग का जो धर्म है उसकी स्थापना करता है। तो भगवान ने सोचा कि बहुत लंबा समय हो गया कि मैंने ये जो वृंदावन का जो प्रेम है, मेरे प्रति जो प्रेम की भावना सर्वश्रेष्ठ भावना है वो प्रदान नहीं की जीवों को। इसलिए रूप गोस्वामी कहते अनर्पित चरिम चिरा करुणयावतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम सो भक्ति श्रियाम। तो अनर्पित मतलब बहुत लंबा समय हुआ है, भगवान ने सोचा कि मैंने जो अर्पित करने के लिए उचित नहीं है ऐसी चीज में देना चाहता हूं जो सर्वश्रेष्ठ है और बहुत लंबे समय से दिया नहीं मैंने, अभी मैं जाना चाहता हूं। और वो वृंदावन की जो प्रेम है, वृंदावन की जो प्रीति है मेरे प्रति भक्तों की, वो जो सर्वोत्कृष्ट भावना है, वे भाव है, वो मैं जगत को देना चाहता हूं। और ये जो भाव, ये जो प्रेम मेरे अलावा कोई और देने का अधिकारी नहीं है। तो भगवान ने सोचा कि मैं स्वयं जाऊंगा, आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते, मेरे अलावा कोई और वृंदावन का प्रीति प्रदान नहीं कर सकता। तो भगवान के हृदय में दोनों इच्छाओं का उदय हो गया था कृष्ण के। कौन सी दो इच्छाएं, एक इच्छा कि मैं सबको ये ब्रज प्रेम देना चाहता हूं, सो भक्ति श्रीयाम सर्वोत्कृष्ट मेरी जो भक्ति है वो प्रदान करना चाहता हूं। और दूसरी चीज क्या है, इस भगवत भक्ति का स्वयं आस्वादन करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं, आस्वादन करना चाहता हूं। ये दोनों चीजें भगवान चाह रहे थे, कृष्ण चाह रहे थे। तो इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं कि वही कृष्ण जब ये सोचते हैं अपने धाम में तो वो क्या करते हैं, इस जगत में अवतरित होने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो भगवान को यदि ये जो भगवत प्रेम है उसका आस्वादन करना था तो वह अपने वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में भी कर सकते हैं, लेकिन यहां आकर क्यों आस्वादन करना चाहते, क्यों, क्योंकि यहां आकर उस प्रेम को वो बांटना चाहते हैं, वितरण करना चाहते हैं, है ना। कोई व्यक्ति घर में भी प्रेशर खा सकता है लेकिन पूरा बकेट भर के बाहर निकले पत्तल वगैरह लेकर तो बाहर खा भी सकता है और क्या कर सकता है, बांट भी सकता है। तो उसको कहते उदारता। तो भगवान आपने गोलोक धाम में एक कार्य कर सकते थे, लेकिन वो यहां आना चाहते हैं सारे जीवों को ये जो दिव्य प्रेम है वो प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए चैतन्य चरित महाकाव्य में वर्णन आता है, दामोदर पंडित को, दामोदर पंडित प्रश्न पूछते हैं, मुरारी गुप्त एक महान भक्त थे, उनको कहते हैं केने श्याम वर्ण तेजी हैल गौर तनु केने वा कीर्तने लुटे गाये त्वंगरी रेनु। उन्होंने कहा कि मेरा ये प्रश्न है ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में, केने श्याम वर्ण तेजी हैल गौर तनु, इन्होंने क्यों अपना श्याम वर्ण को त्यागा और क्यों गौर स्वर्ण के समान पिघले हुए सोने के भांति चैतन्य महाप्रभु का क्या है, वर्ण है, अंग कांति है, इन्होंने क्यों धारण किया और क्यों ये सदैव कीर्तन रस में मग्न रहते हैं और दिव्यता से नाचते हैं गाते हैं। केने वा नागर वेश छाड़ी या संन्यास केने देशे देशे बुले पाई या हताश केने कांदे राधा राधा गोविंद बोलिया घरे घरे फिरे के न प्रेम याचाइया। उन्होंने कहा यही कृष्ण क्यों चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और क्यों वो अलग अलग स्थानों में भ्रमण कर रहे हैं, हर व्यक्ति के पास जा रहे हैं और रास्ते में वो क्या उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्णा जोर से, हरे राम 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 हरे हरे। जब उन्होंने ये पूछा कि क्यों वो राधा गोविंद के नामों का उच्चारण करते हुए जा रहे हैं और क्यों वो हर घर घर में जा रहे हैं और लोगों से याचना कर रहे हैं, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, वही कृष्ण ही जगत में आते हैं और सारे जीवन से तीन चिंतित करने की याचना करते हैं, क्या कि बोलो कृष्ण आप भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करो और कृष्ण का भजन करो और कृष्ण की जो शिक्षा है उसका आचरण करो। इस प्रकार से जब उन्होंने पूछा तो जो महान भक्त है मुरारी गुप्त तो प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि एक बार जो नारद है, नारद जो भ्रमण कर रहे थे कलयुग के शुरुआत में और कलयुग की बहुत अधिक विकट स्थिति को उन्होंने देखा और कलयुग के जो जीव है शुरुआत से ही धर्महीन आचरण कर रहे हैं, धर्म का पालन करना धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इस कारण से नारद बहुत दुखी हो रहे थे कि ऐसे अधर्म बहुत अधिक कलयुग में बढ़ रहा है और कलयुग रूपी जो सर्प है वो सारे जीवों को एक प्रकार से निगल रहा है और सारे जीव भगवान से अलग हो रहे हैं, भगवान से दूर जा रहे हैं। तो नारद ने सोचा कि ऐसे जीवों का उद्धार कैसे हो सकता है, ऐसे जीवों की सदगति कैसे हो सकती है। तो नारद भ्रमण करने लगे, भ्रमण करते करते नारद कहां पहुंचते हैं, द्वारका पहुंचते हैं। कहां, द्वारका। जब नारद द्वारका में गए तो कृष्ण की तो 16,100 रानियां हैं और कृष्ण अलग अलग रानियों के वहां निवास करते हैं, तो ये गए सत्यभामा के महल में। वहां उन्होंने देखा कि कृष्ण उनके महल में है और फिर दूसरे दिन सुबह उन्होंने देखा कि कृष्ण तो रुक्मिणी के महल में है। फिर रुक्मिणी देवी कृष्ण उठते हैं और उनकी सेवा करने के लिए तत्पर हो जाती हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं कि वैकुंठा में या आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में जो ये रानियां हैं वो क्या करना चाहती है, कृष्ण की पर्सनल सेवा करनी चाहती है, उनके पास हजारों मेड्स हैं, लेकिन फिर भी वो ये प्रिविलेज समझती हैं कि हमारा कितना सौभाग्य है कृष्ण की स्वयं सेवा करने का हमें इस मौका मिल रहा है। ऐसे नहीं कि जैसे कई धनवान लोग होते हैं वो घर में तो बहुत बड़ी बड़ी राधा कृष्ण की मूर्तियां रखेंगे लेकिन पुजारी कौन रखेंगे, पेड़। तो ये सेवा नहीं है। महाराज अमरीश थे, राजा होने के बावजूद भी भगवान के लिए स्वयं अपने शरीर से उनकी सेवा करते थे, उनके लिए चंदन घिसना, उनके लिए माला बनाना, उनके लिए भोग तैयार करना। जब हम अपनी
इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम तुरंत शुद्ध हो जाते हैं, और तुरंत हमें पता भी नहीं चलता कि कैस कब मुझसे हम भगवान से प्रीति हो गई। हाँ, क्योंकि जिसकी सेवा आप अपने इंद्रियों के द्वारा करोगे उससे आप आसक्त हो जाओगे। चाहे रोज किसी को एक गिलास पानी देते रहो, ये सेवाएं हैं। धीरे धीरे आप पता चलेगा कि अरे मैं इससे अटैचमेंट हो गई है, नहीं छोटी सी चीज करने से। तो भगवान की हम अपने इंद्रियों के द्वारा सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से शास्त्र कहते हैं कि आसक्त हो जाते हैं बहुत सरलता से। तो ये रुक्मिणी आदि सेविकाओं को नहीं लगाती थी, स्वयं चावल लेती थी, स्वयं जल का जल आदि प्रोवाइड करती थी, उनका मसाज आदि करती थी, उनके लिए भोगास बनाती थी, कृष्ण द्वारका में इन सब चीजों को ग्रहण करते थे। तो उस दिन सुबह जब रुक्मिणी ने कृष्ण बैठे थे सिंहासन पर, तो रुक्मिणी क्या करती है एक जल का पात्र लेती है। सुवासित गंध जल प्रभु काछे हानि पाद प्रक्षालन करे देवी श्री रुक्मिणी। तो उन्होंने भगवान के चरण धोना चाह रही थी, तो एक जल पात्र लाया जिसमें जल था और भगवान के चरणों को उसमें रखा और धो रही थी। आपन संपद पद धरे निज बुके अनुरागे निहारय क्षण देई बुके। तो जब वो उनको धो रही थी तो उन्होंने फिर उन चरणों को भगवान के चरण कमलों को पकड़ा और पकड़कर अपने छाती में लगाने लगी, और फिर हृदय श्रीपाद धरे कांदे रुक्मिणी विस्मित हैया किचो पूछे चक्रपाणी। चक्रपाणी मीन्स कृष्ण। तो रुक्मिणी ने उन चरणों की सेवा करते करते इतने अधिक रोने लगी कि अनकंट्रोल्ड हो गया रुक्मिणी के लिए। उनके चरणों की सेवा कर रही है फिर बीच में अपने छाती में लगा रही है और रोते जा रही है, रोते जा रही है। भगवान ने सोचा रही है रुक्मिणी क्या हो गया, क्यों तुम रो रही हो। भगवान सोचने लगे तो बताओ बताओ तुम क्यों इतना रो रही हो, मेरे चरणों को देखने मात्र से तुम्हारे आंखों से आंसू निकल आ रहे हैं, मेरे चरणों की सेवा करने मात्र से तुम रोदन कर रही हो। हाँ, तो फिर भगवान रुक्मिणी कहती है कि ये सब चीजें हैं, आप जान नहीं सकते कि मैं क्यों रो रही हूं, बल्कि आप सारे जगत की चीजों को जानने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन भगवान को लगा कि मैंने कुछ दिन पहले उसके साथ परिहास किया था। एक बार भागवतम में आता है रुक्मिणी को कहा कृष्ण ने, मैं कहा वृंदावन का ग्वाला और तुम राजकुमारी, मुझसे विवाह किया, फंस गई तुम। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बोलते जा रहे थे भगवान। रुक्मिणी मूर्छित होकर गिर पड़ी, उसको लगा कि कृष्ण मुझे छोड़कर चले जाएंगे, परिहासपूर्ण वचन बोले थे। तो भगवान को लगा शायद वो आगे तक वो मतलब उसको सोचते सोचते वो रो रही है, लेकिन उन्होंने कहा रुक्मिणी ने कहा कि मेरा हृदय चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, हे कृष्ण आप मेरे आराध्य हैं, आप मेरे आराध्य भगवान हैं, मेरे जीवन में चाहे जितनी मर्जी विपदा या कष्ट आए मैं आपकी सेवा छोड़कर कुछ और नहीं करूंगी। और यही वास्तव में भगवत भक्ति है। भगवत भक्ति की सर्वोच्च सीमा है अश्लेष वा पादरताम पिनस्तुमा आदर्श नाम मर्माताम करो तुवा यथा तथा वा विदधा तुलं पटो मत प्राण आतस्तु सएव नापरा। हे कृष्ण आप मुझे आलिंगन करें या लात मार के भगा दें, लेकिन आपकी सेवा में छोड़ूंगा नहीं, आप ही मेरे ईश्वर, आप ही मेरे प्राणनाथ रहेंगे। हे तो पांडवों के जीवन में कितनी विपदाएं आई, हम थोड़ा जप करना शुरू करते, भागवत भगवत गीता पढ़ते, थोड़े से प्रवचन सुन लेते हैं और कुछ घटना विपदा आ जाए, हम सोचते इतना मैं भक्ति कर रहा हूं क्यों मेरे साथ, हाँ छोड़ देते हैं हम, फिर ढूंढते कोई और स्वामी ढूंढते अपने जीवन में। तो लेकिन वास्तव में असली सेवक कौन है, जो अपने जो स्वामी है कृष्ण है उनकी सेवा को जीवन की किसी भी स्थिति में त्यागता नहीं है, यह असली भगवत भक्त का लक्षण है। हाँ, तो जब रुक्मिणी ऐसे बोलती जा रही थी तो उन्होंने कहा, रुक्मिणी ने कहा आप तो सारे जगत को जानते हैं लेकिन आप उसे नहीं जान सकते, उन व्यक्ति के हृदय को आप नहीं जान सकते जिनके हृदय में आपके प्रति दिव्य प्रेम है। ये भगवान की एक कमी है, भगवान को कहते हैं पूर्ण है। तो रुक्मिणी ने जब बोला, रुक्मिणी ने कहा जदिराधा भावरुदे कर आरोपान तबे से जाने बनी जब प्रेमेर लक्षण।
तो रुक्मिणी ने कहा कि आपको ये सब चीजें तभी समझ में आ सकती हैं जब आप श्रीमती राधा रानी का जो भाव है वो अपने हृदय में धारण करो और फिर तब आप ये समझ सकते हो कि आपके जो भक्त हैं उनको आपके चरण कमलों की सेवा करके जो आनंद मिलता है वो आनंद है भगवान आप स्वयं जान नहीं सकते।
जब ये बोला पहली बार भगवान ने कुछ ऐसा सुना था, बहुत सारी चीजें सुनी लेकिन ऐसी चीज सुनने का रुक्मिणी ये क्या कह रही हो, कुछ चमत्कार पूर्ण वचन है, पहले ऐसी चीजें सुनी नहीं। मैं अपने आप को समझता था, गीता में मैंने बोला है भूत भविष्य और वर्तमान को मैं जानता हूं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं सारे जीवात्माओं के हृदय में निवास करता हूं, लेकिन तुम क्या कह रही हो कि मैं अपने भक्तों के हृदय में जो प्रेम की भावना है या प्रेम मेरी सेवा करके जो दिव्य आनंद अनुभव होता है भक्तों को वो मैं नहीं जानता। सही में मेरे आज आंखें खुल गई, क्या हो गया कृष्ण की आंखें खुल गई, उन्होंने कहा सही बोल रही हो। तो इस प्रकार से भगवान ये सोचने लगे कि वास्तव में ये जो चीज है तीनों जगतों में दुर्लभ है। तो रुक्मिणी ने भगवान के चरण कमलों की जो महिमा है उसका उच्चारण करने लगी, बताने लगी जो तीनों चरण भगवान की जो चरण कमलों की सेवा की जो महिमा है। तो फिर भगवान सोचने लगे कि मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए, मुझे यदि अपने भक्तों के दिव्य आनंद को अनुभव करना है तो मुझे क्या बनना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति कहेगा कोई माँ है वो बच्चे की सेवा करके क्या आनंद मिलता है उसको, उसको 10 बार नहलाती है, कपड़े पहनाती है, खुद सूखी रोटी खाएंगे लेकिन उसको गर्म करके खिलाएगी, खूब ठंड में कष्ट प्राप्त करेगी लेकिन बच्चे को ठीक ठाक पहनाएगी कपड़े आदि। तो कोई कहेगा कि इसको क्या आनंद मिलता है, यदि बच्चा सोचे कि मेरी माँ को क्या आनंद मिलता है मेरी इतनी सेवा करके, तो उस बच्चे को क्या बनना पड़ेगा, यदि समझना है तो माँ बनना पड़ेगा, माँ का हृदय। जब आप माँ बनोगे तभी पता चलेगा कि एक बालक की सेवा करके क्या आनंद की अनुभूति होती है। तो उसी प्रकार से भगवान भी इस आनंद को नहीं जानते हैं, तो इसलिए ऐसे कृष्ण फिर सारे भगवान तो सारे सृष्टि की रचना करते हैं या फिर उनके जो अंश कला विस्तार आदि है वो करते महाविष्णु आदि, लेकिन भगवान क्या करते हैं कृष्ण सदैव दिव्य लीलाओं में मग्न रहते हैं। तो ऐसे कृष्ण विशेष प्रयोजन लेकर कलियुगा में अवतरित होते हैं। तो भगवान ने सोचा कि ये जो रुक्मिणी ने कहा है ये बहुत सटीक चीज है, मुझे जानना होगा कि मुझमें क्या कमी है। अभी कौन जानना चाहते हैं अपने अंदर की कमी, हाँ हाथ ऊपर करें, कौन जानना चाहता है, नहीं कलियुगा में तो कोई व्यक्ति नहीं सोचता कि मेरे अंदर कुछ कमी हो सकती है। आप जब शीशे के सामने जाते हो तो लगता है आप में कुछ कमी है, सुबह उठ के स्नान करके श्रृंगार आदि करते हैं वस्त्र आदि पहनते तो लगता है कि कुछ कमी है, नहीं लगता है परिपूर्ण हो। जब बाहर आते हो तो लोग हजारों लोगों को कमी नजर आती है आपकी। तो वैसे भगवान ने सोचा कि मुझे भी अपनी कमी ढूंढनी है, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझ में नहीं है, जो अपूर्णता है, कि ये जो भक्त है वो मुझसे भी अधिक आनंद अनुभव करते हैं। मैंने गीता में कहा भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं भोक्ता हूं, मैं सब चीजों का एंजॉयर हूं, स्वामी हूं, ईश्वर हूं, मालिक हूं। तो फिर भगवान जी भी सोचने लगे कि मुझसे भी अधिक जो दिव्य आनंद की अनुभूति है वो मेरे भक्तों को प्राप्त हो रही है, विशेष रूप से किनको, श्रीमती राधिका को, श्रीमती राधा रानी। तो भगवान सोचते हैं कि श्रीमती राधा रानी में जब वो श्रीमती राधा रानी को देखते हैं तो कहते श्री राधा ये प्रणय महिमा की दृशो वाने वह, कि ये राधा रानी का जो मेरे प्रति सेवा की जो भावना है, जो सेवा का ये जो प्रेम की जो भावना है वो क्या है, मैं इसको समझना चाहता हूं।
और दूसरी चीज वो जानना चाहते हैं अस्वाद्यो जैन अद्भुत माधुरी मां, वो सोचते हैं कि मेरे अंदर ये जो मेरा जो सौंदर्य है, मेरा ये जो अद्भुत सौंदर्य है वो एग्जैक्टली क्या है, कितना आकर्षक है, या जिसके द्वारा श्रीमती राधिका उस सौंदर्य का आस्वादन करती है, या मेरे भक्त मेरे सुंदरता को देखकर आनंदित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। तो भगवान मतलब भक्त के प्रेम की भावना को जानना चाहते थे, तीन चीजें कृष्ण जानना चाहते थे। पहले भक्तों के प्रेम की भावना को जानना चाहते थे, क्या राधा रानी का प्रेम है, और दूसरी चीज भगवान जानना चाहते थे कि मेरा मधुरिमा मेरा सौंदर्य क्या है जो इतना आकर्षक है और जो किसको आकर्षित करता है, इस जगत के त्रिभुवन सबको आकर्षित करता है, इवन भगवान का सौंदर्य भगवान को भी आकर्षित करता है। कृष्ण जब वृंदावन में थे ग्वाल बाल, तो जब एक दिन बछड़े चराने के लिए जा रहे थे, तो दौड़ते दौड़ते जा रहे थे तो बछड़े का पाव जब जमीन में पड़ता है तो एक गड्ढा सा होता है, तो उसमें जल भरा हुआ था बारिश के दिनों में। तो भगवान दौड़ते गए और अचानक उन्होंने नीचे देखा, गड्ढे में उनका प्रतिबिंब दिखाई दिया। तो भगवान ने कहा कौन किशोर है, कौन है जो इतना सुंदर है? थोड़े समय के बाद देखा कि यह कौन है, मैं ही हूं, मेरा ही प्रतिबिंब है। तो कृष्ण जब द्वारका में रहने लगे तो भगवान को जल्दी जाना था अपने सभागृह में, तो भगवान अपने महल से बाहर निकलते हैं, तो द्वारका का जो महल है उसमें सारे अलग अलग मणियों से बना होता है, तो वहां भगवान निकल रहे थे बहुत जल्दी से, तो उन्होंने खंबे की ओर ऐसे देखा, जाते जाते तो उनका प्रतिबिंब दिखाई दिया। तो भगवान ने कहा क्वा चमत्कारी का पुरुष, कि ये कौन चमत्कारी पुरुष है जिसको देख के मैं रुक गया। फिर तो भगवान को समय देखने लगे तो देखा कि ये तो मैं ही हूं। तो ऐसी ऐसी घटनाएं जो कृष्ण द्वापर युग में आए थे, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी, अपने सौंदर्य के प्रति आकर्षित हो गए थे। तो ऐसे भगवान अपने मधुरिमा अपने माधुर्य सौंदर्य आदि को जानना चाहते थे, और कि राधा रानी किस प्रकार से इससे आकर्षित होती है या रिलीज करती है। और तीसरी चीज भगवान जानना चाहते थे कि मेरा मेरी सेवा करके या मेरा सौंदर्य आदि देखकर भक्तों को क्या आनंद मिलता है ना, सेवा करके क्या आनंद मिलता है, ये चीज कृष्ण जानना चाहते थे। तीन चीजें जिसके कारण जो भगवान है किस रूप में अवतरित होते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलियुगा में। इसलिए श्रील प्रभुपाद ऐसे नहीं कि चैतन्य महाप्रभु का वर्णन शास्त्रों में नहीं है, महाभारत विष्णु सहस्रनाम उपनिषदों में भागवतम में सब ग्रंथों में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आता है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्ण, क्या ऐसे जो कृष्ण वर्ण को धारण करने वाले जिनके मुख में सदैव कृष्ण नाम रहता है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु इस जगत में प्रकट होते हैं। तो प्रभुपाद जब अमेरिका में थे लॉस एंजलिस में, तो एक बार वो प्रवचन दे रहे थे, तो प्रवचन की शुरुआत में उन्होंने सारे भक्तों से प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा कि हु इज लॉर्ड चैतन्य, आप बताओ कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो एक भक्त ने हाथ ऊपर किया, प्रभुपाद स्वामी जी, तो बोलो। तो उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार है। प्रभुपाद ने कहा नहीं। फिर प्रभुपाद ने कहा कि क्या है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाह्यान्य, श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण है, अवतार नहीं है, उनके अवतार नहीं है, स्वयं कृष्ण है। तो इस प्रकार से कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु में कुछ अंतर नहीं है। तो भगवान ने सारे शास्त्रों को बुलाया था, वेद आदि को, उन्होंने कहा मुझ में कोई एक कमी है जिसको आप लोग बताओ, मेरे बारे में तो वर्णन आया है उपनिषद में, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि मैं पूर्ण हूं, पूर्ण से जो भी निकालोगे वो भी क्या है, पूर्ण है। लेकिन ये सब बड़े बड़े शब्द मेरे बारे में लिखे गए, लेकिन मैं अभी महसूस कर रहा हूं कि पूर्णता मुझ में नहीं है, कुछ तो मेरे अंदर कमी है। ये राधा रानी में कुछ तो एक्स्ट्रा है, भगवान सोचने लगे। तो एक्स्ट्रा क्या है? हमेशा राधा रानी एक स्टेप अहेड है, कृष्ण से आगे है। हाँ, कृष्ण हरि है तो राधा रानी क्या है? मनोहर है, मन को भी हरण करने वाले हैं। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण मदन मोहन है, मदन मीन्स कामदेव को भी आकृष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो राधा रानी क्या है? मदन मोहन मोहिनी है। तो भगवान ने कहा कि मैं भगवद गीता में तो घोषित कर चुका हूं कि मैं परम नियंता हूं, परमेश्वर हूं, हाँ सब मेरे काबू में है। हाँ, लेकिन श्रीमती राधिका क्या है? परम ईश्वर ईश्वरी है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा, गीता में मैंने बोला है परम ज्ञाता हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं राधा रानी की जो सेवा की भावना है उसको जान नहीं पाता, इसी कारण से मुझ में ये अपूर्णता है। तो सारे वैदिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद सबको बुलाया, कहा कि बताओ मुझ में क्या कमी है। तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी भगवान को कमी बताना। अभी कोई व्यक्ति है हाँ, जो आपने बहुत बड़े व्यक्ति को कमी बताया, अपने बॉस को बोले कि तुम में ये प्रॉब्लम है, तुम में ये कमी है। तो कोई वैदिक ग्रंथ बोल नहीं रहे थे, लेकिन एक ग्रंथ बहुत पावरफुल था। कौन था? श्रीमद् भागवतम। भागवतम खड़ा हो जाता है और कृष्ण को कहता है हाँ, कि आप में एक कमी है और वो कमी यही है हाँ, जो किसने बोली थी? रुक्मिणी ने, कि आपके प्रति जो प्रेम या आपकी सेवा करके जो भक्तों को दिव्य आनंद अनुभव होता है हाँ, वो आप में नहीं है, वो दिव्य आनंद आपके पास नहीं है हाँ, ये एक कमी है। तो कृष्ण ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए उस दिव्य आनंद की अनुभूति करने के लिए। तो श्रीमद् भागवतम कहता है वो अनुभव तभी आपको संभव है जब आप भक्तों के चरण धूलि से अपना अभिषेक कराओगे। कैसे? चरण धूलि से। अभी तो हमने सुना है पंचामृत से अभिषेक होता है, पंच गव्य से अभिषेक होता है, लेकिन और किसी चीज से अभिषेक मुश्किल है। जैसे बच्चे छोटे होते तो बेर से बच्चे को नहलाते ना, एक वैदिक ये है कार्य है, ब्रेड जो फ्रूट होता है। तो वैसे भगवान को कहा भागवतम में कि आपको आपके जो भक्त है उनके चरण कमली कमल का जो धूलि है उसके द्वारा आपको अभिषेक करना होगा, जिसके द्वारा आप इस अपूर्णता से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ने सोचा मेरे भक्त बेस्ट डिवोटी कौन है? कौन है बेस्ट डिवोटी? श्रीमती राधिका है, राधा रानी है। तो राधा रानी हाँ, जिनका वर्णन आता है हम हमेशा बोलते हैं तत्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तत्त कांचन गौरांगी, उनका अंग कांति तपे पिल्ले वे सोने के भांति है हाँ, तत्त कांचन। तो भगवान श्रीमती राधा रानी के चरण व्रज से अभिषेक करते कृष्ण, कृष्ण को कहा जाता है पहले उनका नाम क्या है? काला चांद। प्रभुपाद ने मुझे पता नहीं शिकागो पता नहीं कौन सी जगह में विग्रह की स्थापना की है जहां डीटी का नाम है श्री श्री राधा काला चांद जी। तो भगवान कृष्ण तो काला चांद थे, लेकिन जब श्रीमद् भागवतम ने कहा कि आपको सही में यह दिव्य अनुभूति करनी है कि भक्त के हृदय में आपके प्रति प्रेम और आनंद कितना है, तो भक्त के चरण कमल के धूलि से आपको स्नान करना होगा। तो भगवान श्रीमती राधिका के जो चरण धूलि है उससे स्नान करते हैं, तो जो काले हैं भगवान वो क्या बन जाते हैं? गौरे बन जाते हैं, गौरा चांद जिसे हम गाते हैं गौरार्ती में, एक सॉन्ग भी है गाय गौरा चांद मधुर सुरे। तो जो कृष्ण है वो गौरांग महाप्रभु बनते हैं, कलर चेंज हो जाता है उनका। और कलर तो चेंज होता ही है, लेकिन कलर चेंज होता है जिसको कहते हैं द्युति। द्युति द्युति मतलब महाप्रभु सुवर्ण वर्ण के हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण वैसे ही है। इनको और इजीली समझना है तो शास्त्र आचार्य अगर एक उदाहरण देते कि सोचो कि एक बर्फ का पहाड़ है और ऊंचा है बहुत, और वो यदि पहाड़ नीचे से ऊंचाई पर है उसमें तरलता नहीं होती, लेकिन तरलता कहाँ है, उसके नीचे है, पिघलते हुए जा रहा है, उससे नदी बहती है। तो मान लीजिए कि यदि पर्वत कहने लगे कि मैं अपने आप का आस्वादन नहीं कर पाता क्योंकि मैं क्या हूं, बहुत ऊंचाई पर हूं, तो मुझे, मैं आस्वादन करना चाहता हूं अपने आप का, तो मुझे क्या करना होगा, कैसे करूं? तो या तो जो नदी बह रही है तो वो नदी कह सकती है कि मैं तो आपसे ही निकली हूं। हाँ, तो यदि आपको रियली आस्वादन करना है तो आपको पूर्ण रूप से पिघलना होगा, उस बर्फ के पहाड़ को क्या करना होगा, पिघलना होगा। तो उसी, जब पिघलोगे तब वास्तव में मेरा आस्वादन कर सकते हो। तो वैसे कृष्ण ही क्या है, उस पर्वत के भांति है। लेकिन वही कृष्ण जब श्रीमती राधा रानी की भावना को धारण करते हैं और वो उस भावना के द्वारा, भक्ति की जो भावना है उसके द्वारा कृष्ण पिघलते हैं, तो वो कौन बन जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु। इसलिए कहते हैं राधा भाव दिति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, मैं ऐसे कृष्ण स्वरूप को प्रणाम कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं जिन्होंने राधा भाव द्युति, द्युति मीन्स कांति, उनका जो कलर है। तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनते हैं और वो राधा रानी की जो कांति है उसको वो धारण करते हैं, अंग कांति को धारण करते हैं, जिसको संस्कृत में कहते हैं द्युति। द्युति का मतलब, जैसे गीता में भी भगवान ने एक श्लोक बोला है शब्द, द्युता नाम शलयास्मि, ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। तो भगवान कहते हैं जो द्युत है, द्युत क्रीड़ा है, उछलियों में मैं वो हूं, द्युत क्रीड़ा हूं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भगवान एक प्रकार से श्रीमती राधा रानी की जो अंग कांति है उसको चुराते हैं। इसलिए कहते हैं श्री राधिकाश्यम हृदय चौरम, भगवान कृष्ण ने राधा रानी का हृदय को चुरा लिया और कहां स्थापित किया, अपने हृदय में। इसको क्या कहेंगे, पहली ये हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी है। राधा रानी का हृदय ले लिया कृष्ण ने, आपने यहां डाल दिया, चेंज किया, और उनकी अंग कांति ले, काले सावले हैं उनकी, राधा रानी की गौर वर्ण को लिया और अपने ऊपर धारण किया, तो वो चैतन्य महाप्रभु बनते हैं, गौरांग महाप्रभु बनते हैं। तो ऐसे भगवान, तो इस चीज को जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आध्यात्मिक जगत में भी आस्वादन कर सकते हैं, लेकिन वही जगत में आते विशेष रूप से इसका वितरण करने के लिए। किस चीज के लिए आते हैं, इसका वितरण करने के लिए, इसको देना चाहते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं आनिया प्रेमेरा वन्या चौधरी के डुबाए, चैतन्य महाप्रभु आए हैं और उन्होंने सारे जगत को ये जो कृष्ण प्रेम रूपी धन है वो सबको दे रहे हैं। इसलिए रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हुए एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, कौन सा श्लोक है, नमो महा वदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर द्विषेण। जब भगवान को भोग लगाते हैं तो ये मंत्र बोला जाता है, नहीं नमो ब्राह्मण देवाय बोलते हैं। तो इस प्रकार से जब रूप गोस्वामी ने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने कहा नमो महावदान्याय, कि हे चैतन्य महाप्रभु आप बहुत अधिक दयालु हो, बहुत अधिक करुणामय हो, आपसे अधिक दयालु कोई और नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप सन्यासी होकर भी एक सर्वोत्कृष्ट चीज का वितरण कर रहे हो। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं 520 साल पहले नवद्वीप बंगाल मायापुर में अवतरित होते हैं और सन्यास ग्रहण करके सारे जगत को कृष्ण प्रेम का वितरण करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत दयालु हो और सबको एक चीज बांट रहे हो। अभी सन्यासी के पास क्या है जो बांट सकता है, सन्यासी के पास कोई ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी वस्तु है जो किसी और के पास नहीं है और वो क्या है, कृष्ण प्रेम प्रदायते, क्या दे रहे हो आप, कृष्ण प्रेम दे रहे हो। तो कोई कहेगा कि अरे जो कृष्ण प्रेम तो कृष्ण दे सकते हैं, हाँ ये चैतन्य महाप्रभु कैसे है। इसलिए रूप गोस्वामी ने आगे कहा नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय, क्योंकि आप कौन हो,
कृष्ण कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर कृषे नमः। तो इस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सबको ये भक्ति का वितरण करते हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य हम, आप जितना मेरा भजन करोगे ना उतना मैं आपसे संबंध रखूंगा। उसको कहते हैं जैसा को तैसा। इस जगत में भी है ना, आप जिससे थोड़ा सा जैसा व्यवहार करोगे वो भी आपसे उतना ही व्यवहार करेगा, आप जितना घुल मिलोगे वो भी आपसे उतना ही घुल मिलेगा। तो कृष्ण के साथ ऐसे है, कृष्ण के लिए कहा जितनी तुम मेरी शरण ग्रहण करोगे उतना ही मैं भी आपकी शरण ग्रहण करूंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के साथ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु चाहे आप उनकी शरण ग्रहण करो या ना ग्रहण करो, लेकिन वो तत्पर है, वो आपके पास आकर अपनी कृपा बरसाना चाहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की तुलना एक बादल से की गई है। बादल समंदर से जल ग्रहण करता है और कहा दूर दूर जाता है वो बादल, कोई बुलाता है क्या बादल को? नहीं बुलाता। वो बादल जाता है और सबके ऊपर बिना किसी कार्य के, बिना किसी आपने उस बादल के लिए कुछ किया भी ना हो, वो बादल आकर आपके ऊपर वर्षा करता है। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु की तुलना उससे की जाती है, जब एक राजा था वो बहुत सारा धन बांटते जा रहा था लोगों को, जिसके भी पास जितना बड़ा पात्र है उतना धन वो दे रहा था उसके जन्मदिन के दिन पर। तो एक व्यक्ति गया, उसने कहा मेरे पास में कुछ पात्र ही नहीं है। राजा ने कहा पात्र नहीं, ये ले लो पात्र। राजा ने पात्र दिया और कहा ये ले लो दान। तो महाप्रभु ऐसे है चैतन्य महाप्रभु, आपके पास योग्यता हो या ना हो, पात्रा पात्र विचार नाही नाही स्थानास्थान। आप क्वालिफाइड हो अनक्वालिफाइड हो, लर्नर्ड हो अनपढ़ हो, हाँ जो मर्जी हो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा का वर्षा सबके ऊपर करते हैं। हाँ जैसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी से आ रहे थे वृंदावन की ओर झारखंड के जंगल में, उनको कौन दिखाई दिया है? प्राणी, शेर है, हाथी है, हिरण है, ये सारे प्राणी। तो जब हाथी स्नान कर रहे थे तो महाप्रभु जल में गए, थोड़ा पानी उठा और हाथी के ऊपर डाल दिया, कहा कृष्ण कृष्ण बोलो। तो हाथी सारे इकट्ठा हो गए, चिल्लाने लगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि नृत्य कर रहे जंगल में तो सारे हिरण शेर गले में गला डालकर क्या बोलते जा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। चैतन्य महाप्रभु जब एक जगह जा रहे थे तो एक धोबी कपड़े धो रहा था, तो अपना कार्य कर रहा था। महाप्रभु ने कहा कीर्तन करो, हरे राम का उच्चारण करो, हरे कृष्ण कहो और अपना मनुष्य जीवन सार्थक बनाओ। तो उसने कहा अरे भाई जब ये हरे कृष्ण बोलते रहोगे तो कपड़े कौन धोएगा? चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं धोऊंगा, तुम क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जैसे महाप्रभु ने बोला मैं कपड़े धोता हूं, पिघल गया, हरे नाम के द्वारा भगवान ने उसको धुलाई कर दी उसकी, हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। हमारी तो दोनों चीजें गंदी है, कपड़े भी गंदे और हृदय भी गंदा है, तो हमें महाप्रभु की बहुत अधिक कृपा की आवश्यकता है। हमें आंतरिक रूप से भी अपनी सफाई की आवश्यकता है और बाहरी रूप से भी सफाई की आवश्यकता है। चैतन्य महाप्रभु आते, जैसे फ्रांस में लोग स्नान नहीं करते तो कपड़े कहाँ धोते होंगे, वहां तो प्रभुपाद ने बोला आपने एक प्रवचन में, वहां तो बस डिओडोरेंट और ये जो स्प्रेज आदि है वो सब लगाकर जाते, बस सुगंधी आती है। वहां स्नान करना मतलब लोग परेशान होते हैं, अरे सुबह हो गई मतलब क्या करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। कलियुगा का एक लक्षण भागवत में बोला गया है, कलियुगा के लोग स्नान करने में आलसी होंगे, स्नान ही नहीं करेंगे। अब देखो पशु स्नान नहीं करते, कलियुगा के जो पशु की तरह हो रहे हैं। इसलिए महाप्रभु ने कहा ये इतने आलसी है, इतने लेजी है, ये करेंगे तो क्या करेंगे, इनको शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते, बहुत सारी बड़ी बड़ी सेवाएं नहीं कर सकते,
इसलिए उनकी धुलाई मैं करूंगा। किसके द्वारा?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।
तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आते हैं और वो अकेले नहीं आते, वो अपने सारे पार्षदों के साथ या भक्तों के साथ आते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम की 11वें स्कंध में वर्णन आता है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उसमें कहा गया है कृष्ण वर्ण त्रिषा कृष्ण सांगो पांगार्ष पार्षद यज्ञ संकीर्तने प्रायः यजन्ति ही सुमेधसा, कि जो कृष्ण है वो अवतरित होंगे लेकिन उनका वर्ण कृष्ण के समान नहीं होगा। कृष्ण वर्ण त्रिषा अकृष्ण, त्रिषा मीन्स उनका अंगकांति, बॉडीली कलर कैसे होता होगा, अकृष्ण शामिल नहीं होगा। तो कृष्ण वर्ण मतलब उनकी जीवा सदैव कृष्ण नाम का उच्चारण करती रहेगी, और वो अकेले नहीं आएंगे, वो अपने सारे भक्तों के संग में आएंगे। हाँ, इसलिए तो पंच तत्व है, अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित और हजारों भक्तों के संग में वो अवतरित होंगे। और कलियुगा में यज्ञ संकीर्तन प्राय, कलियुगा में ये जो विशेष यज्ञ है उसकी स्थापना करेंगे। और वो यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु अवतरित होंगे और भागवत कहता है कि ऐसे संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जो जीव उनकी उपासना उनकी पूजा करेगा सुमेधसा, ये शब्द आया है, यजन्ति ही प्राय सुमेधसा, सुमेधसा मतलब बहुत अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होगा, उससे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। इसलिए अलग अलग शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु का जो दिव्य वर्णन है वह हमें प्राप्त होता है, और इसलिए हमें ये जो विशेष अवसर आ रहा है चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का, हाँ जो गौर पूर्णिमा उनका जो अवतरित होने का जो दिन है, होली के दिन ही भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं, जिसके द्वारा सारे जगत को नाम प्रदान करना चाहते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आते ताकि हम जो इंद्रिय भोग की भावना है उससे मुक्त हो जाए और हमारे हृदय में उनके प्रति जो प्रगाढ़ प्रेम की भावना है वो जागृत हो जाए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का जो ये प्रेम है उसको धारण करने के लिए भी हमारे पास एक पात्रता की आवश्यकता है, कोई पात्र होना चाहिए। अभी हम प्रवचन में भी आए हैं तो भी हमारे पास क्या होना चाहिए? पात्रता। अभी कलयुग में पात्र सबके पास है, ऐसा पात्र है तो इसमें आप रख सकते हो, ऐसा पात्र लेके जाओगे तो क्या होगा, जो भी डालोगे भय के चला जाएगा। तो वैसे ही है, चाहे हम भगवान की सेवा करते हैं, जप करते हैं, अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, उसमें हमारा पात्र हमेशा ऐसा रहता है। हमें पात्र कैसा करना चाहिए? ऐसे, लेकिन छेद भी नहीं होना चाहिए उसमें, छेद होगा तो क्या होगा, सारी चीजें चली जाएंगी जो भी आपने किया है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु से जो मिट्टी का पात्र है, जो सिंहनी होती है उसका दूध वो धारण नहीं कर सकता, फट जाएगा, टूट जाएगा, उसके लिए स्ट्रांग पात्र चाहिए। तो वैसे ही महाप्रभु की कृपा के लिए भी एक पात्रता की आवश्यकता है, वो पात्र चाहिए हमारे पास। और वो पात्र कौन सी चीजों से बना होता है? चार चीजों से। अब ये शरीर कितने वस्तुओं से बना है? पांच, भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धि एवच। तो ये जो पांच मेन भौतिक जो स्थूल तत्व है उनसे बना हुआ है। तो लेकिन महाप्रभु की कृपा रस को पीने के लिए हमारे पास एक पात्र की आवश्यकता है, और वो पात्र बनता है एक चीज से, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा है, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदारे। उस पात्रता की पहली योग्यता है त्रिनादपि सुनीचेन, हमारे पास विनम्रता होनी चाहिए भगवान की कृपा को धारण करने के लिए। जैसे वो उस पर याचक, एक होता है दाता और दूसरा कौन है? याचक। तो हमारे पास वो याचना की भावना होनी चाहिए कि मुझे रियली मेरे जीवन में भगवान
की कृपा आवश्यक है, मेरे जीवन में भगवान चाहिए जिस प्रकार से पांडवों के जीवन में थे। हाँ, तो उसके लिए याचना करनी होगी भगवत कृपा की। हाँ, तो वैसी कृपा हमें हमेशा भगवान से मांगनी होगी, और उसमें किस चीज की आवश्यकता है, विनम्रता की आवश्यकता है। हाँ, जैसे बाइबल में आता है जीसस क्राइस्ट जब एक मंदिर के बाहर खड़े थे तो एक व्यक्ति आया बड़ा गरीब सा, और वो गया अंदर, वो प्रार्थना करने लगा, भगवान को कहने लगा मैं तो बहुत नीच हूँ, आदम हूँ, पतित हूँ, आपकी कोई सेवा नहीं कर पाता। उसी क्षण दूसरा व्यक्ति भी अंदर गया, तो ये जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों के साथ बाहर खड़े थे, दूसरा गया और दोनों गए और दोनों बाहर आके निकल गए, तो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि भगवान ने एक की ही बात सुनी, दूसरे की नहीं सुनी, एक ही प्रार्थना। तो शिष्य ने पूछा क्या, तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो गया बहुत दीनहीन की भावना से भगवान को याचना करने लगा, उनकी सेवा कृपा की याचना करने लगा। दूसरा जो था, भगवान मैं रोज आता हूं तो मेरे हुंडी में नाम देता हूं, मेरे कारण ये चल रहा है आपकी सेवा, समझे, ये देखो इसको देखो ये करता क्या है। इस प्रकार से वो अपना घमंड और अपना अहंकार, अपना गर्व आदि को प्रकट कर रहा था। जीसस क्राइस्ट ने बाहर से बोल दिया अपने शिष्य को, एक की बात सुनी और दूसरे की नहीं सुनी। तो उसी प्रकार की भावना हमारे पास होनी चाहिए, तृणादपि विनम्रता का भाव हमारे पास होना चाहिए। जैसे वृक्ष में फल लगते तो क्या होता है, अधिक झुकता है, जिसमें फल नहीं है, गुण ही नहीं है, वो चौड़ा हो जाता है। हाँ, जो भगवत भक्ति हमें चाहिए तो विनम्रता की भावना भगवान और भक्तों के समाज में हमें विकसित करनी चाहिए। तृणादपि सुनी चेना तरोरेव सहिष्णुना, हमें सहनशील होना चाहिए, किसके भांति, वृक्ष के भांति। शास्त्र कहते हैं काटिले ही तरो किछु ना बोलाय। चैतन्य चरितामृत कहते हैं कि काटिले ही, मतलब वृक्ष को काटोगे फिर भी वो कंप्लेन नहीं करता किसी से। मतलब देखो हद होती है, मनुष्य काटेगा आधा वृक्ष को, उसके नीचे बैठेगा, सोएगा, फिर उठ के काटेगा, फिर भी जब तक वो नीचे है तब तक वो वृक्ष छाया देता है उसको। वृक्ष का जीवन हमेशा दूसरे के लिए है, इतना सहनशील है। तो उस प्रकार से हमें भक्तों के समाज में भी सहन करना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। तृणादपि सुनी चेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना, बिना मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, और हमेशा तत्पर होना चाहिए दूसरों को मान या सम्मान आदर देने की भावना। तो ये चार इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे ये पात्र बनता है, और ये जिसका पात्र उत्तम है उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है बहुत तीव्रता से होगी और उनका प्रिय बनेगा, और निश्चित रूप से उसके हृदय में कृष्ण के लिए अहेतु की जो प्रीति है वो स्थापित हो जाएगी। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है श्रील प्रभुपाद आदि आचार्यों के द्वारा हमें प्राप्त होती है, और महाप्रभु की शिक्षा ठीक रहे थाको बने थाको सदा हरि बोले लाखो। चाहे आप घर में रहो या जंगल में रहो, लेकिन एक चीज जरूर करो, क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु के जो आंदोलन हम श्रील प्रभुपाद सारे विश्व में ले गए, और उनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है सब लोगों के पास पहुंच रही है, जगत के सारे देशों में। तो जो नवदीप मायापुर है, जो धाम है चैतन्य महाप्रभु का, यही वृंदावन नवद्वीप या मायापुर के रूप में अवतरित होता है। जैसे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो ये वृंदावन किस रूप में अवतरित होता है, मायापुर। तो वृंदावन बड़ा कठोर है, वहां आप छोटी सी गलती करोगे तो आपको उसका दंड मिलेगा, लेकिन वही वृंदावन जब बहुत अधिक दयालु हो जाता है वह नवद्वीप मायापुर धाम उसे कहते हैं। मतलब कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में अंदर क्या है, सरल एक चीज है, कृष्ण के अंदर जब कृपा बहुत अधिक बढ़ जाती, करुणा की भावना, दया की भावना, वो कौन बन जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु। जैसे ग्लास
भरा हुआ है,
भरा हुआ ग्लास कृष्ण है, लेकिन जब ओवरफ्लो हो जाता है ग्लास तो वो कौन है, चैतन्य महाप्रभु है।
कृष्ण को तो कहा गया है कृष्ण करुणा सिंधु सागर, लेकिन सागर जब सुनामी की तरह बाहर आ जाता है वो तो भया हुआ है तो थोड़ा हम समझ सकते हैं, वो करुणा का सागर जब करुणा को बाहर देता है लोगों के पास तो वह चैतन्य महाप्रभु है, सरल है, अपनी करुणा अपनी कृपा वर्षाव करते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कलयुग में, ताकि उनके द्वारा ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हैल से बलराम हैलो निता है। तो ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण है वही साक्षात चैतन्य महाप्रभु है, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने कहा जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, उनकी कृपा प्राप्त करने का सरल उपाय है स्वयं कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की सेवा में लगो, और जो भी आपके संपर्क में आ रहा है उसको भी कृष्ण से जोड़ दो, कृष्ण भक्ति उसे प्रदान करो। हम इस जगत में क्या दे सकते हैं, किसी को आप धन दोगे कपड़ा दोगे वो भूल जाएगा एक महीने के बाद आपको, लेकिन उसके जीवन में आप कृष्ण दोगे कभी नहीं भूलेगा। हाँ, ये असली धन है। तो आज हमने यही चर्चा की चैत कृष्ण की चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और उनके कई सारे कारण है, अंतरंग कारण थे, मुख्य कारण थे कि वो तीन चीजें जानना चाहते थे, राधा रानी का जो प्रेम है और उनका जो माधुर्य या सौंदर्य है जिसको राधा रानी आस्वादन करती है, और उनकी सेवा करके भक्तों को क्या आनंद मिलता है, और दूसरा और बाहरी कारण क्या थे कि वो कृष्ण नाम का सबको प्रदान करना चाहते थे। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु के गौर पूर्णिमा उत्सव के गौर पे वंदे। एक छोटा सा